आप हैं SBS हिंदी के साथ। इस बुलेटिन में जापान में आए शक्तिशाली भूकंप में 4 लोगों की हुई मौत और 90 से अधिक लोग हुए घायल। ग्रामीण क्वींसलैंड में जीपी की गंभीर कमी के बीच अस्थाई डॉक्टरों पर स्वदेशी स्वास्थ्य सेवाएं कर रही हैं लाखों में खर्च। और खेल में कॉलिंगवुड में एक कोविड-19 क्लस्टर के कारण AFLW फाइनल श्रृंखला का आयोजन मुश्किल में। अब समाचार विस्तार से। जापान के तट पर आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने शुरू में बताया कि उत्तरी जापान में फुकुशिमा के तट पर 7.4 तीव्रता के भूकंप से 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने गुरुवार को एक संसदीय सत्र में बताया कि अब और मौतें दर्ज की गई हैं। मरने वालों में सोमा शहर के 60 के दशक में एक व्यक्ति थे जिन्होंने भूकंप से बचने के लिए अपने घर की दूसरी मंजिल से गिरकर जान गंवा दी, और 70 के दशक में एक व्यक्ति थे जिन्हें भूकंप के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। फुकुशिमा एक ऐसे क्षेत्र का हिस्सा है जो 11 साल पहले 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से तबाह हो गया था, जिसकी वजह से परमाणु रिएक्टर मेल्टडाउन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस का कहना है यूक्रेन से भागने के बाद पोलैंड पहुंचने वाले शरणार्थियों की स्थिति उन सैकड़ों हजारों लोगों की तुलना में बदतर है जिन्होंने संघर्ष के शुरुआती दिनों में पोलैंड में शरण ली थी। संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग UNHCR के प्रवक्ता मैथ्यू सॉल्टमार्श का कहना है कि वे नए शरणार्थियों की बेहतर मदद के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं।
What we've seen in the last few days is indeed that the refugees who have been coming across are more vulnerable in a more traumatic state than those ones who came in the first days and maybe the first week. And what we've been doing is bringing more people into the country, bringing more assistance into the country to do what we can to help those cases.
यूक्रेन से भागकर पोलैंड जाने वाले शरणार्थियों की संख्या अब 1.8 मिलियन से अधिक हो गई है। स्थानीय समाचार में फेडरल सरकार ने घोषणा की है कि उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के कुछ क्षेत्रों में अधिक आपदा सहायता प्रदान की जाएगी। बलीना, बायरन, कायोगल और ट्वीड हेड्स के उन निवासियों को राशि का भुगतान स्वचालित रूप से दिया जाएगा जिन्हें पहले ही मूल आपदा वसूली भुगतान प्राप्त हो चुका है। इससे पहले लेबर पार्टी ने चिंता जताई थी कि फंडिंग एक पक्षपातपूर्ण आधार पर बांटी जा रही है और नॉर्दर्न रिवर्स के क्षेत्र जैसे कि बलीना, जो कि लेबर मतदाताओं का क्षेत्र है, वहां से फंडिंग गायब है। उनके हिसाब से फंडिंग पहले से ही लिजमोर जैसी गठबंधन की सीटों को प्रदान की जा चुकी है। यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आगे के वित्त पोषण की खबरों में देरी कर रहे थे क्योंकि वे पर्थ में प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा में देरी कर रहे हैं।
We work closely with state governments, but when you're talking about the investments of hundreds of millions of dollars and indeed billions now, then I think people would expect us to go through the proper assessment of the proposals, which we did yesterday at the National Security Committee of Cabinet. I'd advise the Premier that that's what we'd be doing and then getting back to him as soon as possible.
महामारी के दौरान रिपोर्ट किए गए अपराधों में कमी के बावजूद विक्टोरिया पुलिस का कहना है कि घरेलू हिंसा पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। क्राइम स्टैटिस्टिक्स एजेंसी ने गुरुवार को नए आंकड़े जारी किए जिसके अनुसार विक्टोरिया ने 2014 के बाद से कुल अपराधों की सबसे कम संख्या दर्ज की है। 1993 में डेटाबेस संग्रह शुरू होने के बाद से चोरी और तोड़फोड़ के साथ अपराध के मामले अपने निम्नतम स्तर पर पाए गए और पारिवारिक हिंसा की घटनाओं में भी 1.5% की गिरावट आई। लेकिन क्षेत्रीय संचालन उपायुक्त रिक न्यूजन का कहना है कि इन आंकड़ों पर विचार करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
Family violence is and will continue to remain a significant priority for Victoria Police. Family violence teams across the state continue to investigate reports of family violence, as well as proactively visiting known perpetrators to ensure they're held to account for the orders that they're on.
उधर ग्रामीण क्वींसलैंड में डॉक्टर की कमी इतनी गंभीर हो गई है कि कई मरीज जीपी को देखने के लिए लंबी अवधि तक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि स्वदेशी स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय चिकित्सकों पर लाखों डॉलर खर्च रही हैं। ग्लैडस्टन में नुलुंदु स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख मैथ्यू कुक ने ग्रामीण ऑस्ट्रेलिया में जीपी सेवाओं की एक फेडरल सेनेट जांच को बताया है कि नुलुंदु सेवा ने पिछले 5 वर्षों में लोकम डॉक्टरों को नियुक्त करने में 3.5 बिलियन खर्च किए हैं क्योंकि वह एक स्थायी डॉक्टर नहीं ढूंढ पाए। जांच में ये भी सुना गया कि मरीजों को देखने की देरी हो रही है, कुछ तो अपॉइंटमेंट के लिए 12 सप्ताह तक इंतज़ार कर रहे हैं। ये खुलासा आज यानी कि ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्लोज द गैप डे पर किया गया। रिपोर्ट के अनुसार स्वदेशी और गैर स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए स्वास्थ्य परिणामों के बीच अंतर पाया गया है। कैंसर काउंसिल द्वारा जारी नए शोध से पता चलता है कि गैर स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तुलना में आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर कैंसर रोगियों के बीच जीवन प्रत्याशा में 8 साल की असमानता है। परिषद की मेगन वर्लो का कहना है कि प्रथम राष्ट्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच इन परिणामों में भूमिका निभाती है।
We know that Aboriginal and Torres Strait Islander cancer patients face additional logistic, systemic, cultural and socio-economic barriers across the cancer pathway, and so those make a difference to their cancer outcomes, but those same barriers we also see in terms of access to health services more generally, and that impacts life expectancy.
उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 24 घंटों में 2,876 नए मामले दर्ज किए जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 32,811 हो गई। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को तेजी के साथ वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उन्होंने 27 मार्च से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की बहाली की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कोविड प्रबंधन से संबंधित निर्देश जारी करते हुए गहन निगरानी, आक्रामक जीनोम अनुक्रमण और देश में उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने के लिए आग्रह किया। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 73 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55 रुपए और 60 पैसे हो गई है। खेल समाचार में एक कोविड-19 क्लस्टर की वजह से AFLW फाइनल सीरीज में कॉलिंगवुड में होने वाले मैगपाइस के क्वालिफाइंग फाइनल को स्थगित कर दिया गया है। कॉलिंगवुड शनिवार रात को गाबा में ब्रिस्बेन लायंस से भिड़ने वाले थे लेकिन AFL ने फैसला किया है कि ये योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ेगा। AFL ने अभी तक फाइनल के लिए एक नई तारीख की पुष्टि नहीं की है। AFLW कोविड-19 गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक टीम में खेलने के लिए न्यूनतम 16 प्राथमिक सूचीबद्ध खिलाड़ी और 5 ट्रेन ऑन खिलाड़ी उपलब्ध होने की आवश्यकता है। उधर न्यूजीलैंड में चल रहे महिला वर्ल्ड कप में भारत को अपने चौथे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने इंग्लैंड के सामने 135 रन का लक्ष्य रखा था जिसे इंग्लैंड ने 31.1 ओवर में 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। जीत में नाबाद 53 रन बनाने वाली कप्तान हेदर नाइट टॉप स्कोरर रहीं और इंग्लैंड की गेंदबाज चार्ली डीन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में आंशिक बादल रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 29 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में बादल छटेंगे और मौसम साफ होने की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 29 तक जाएगा। मेलबर्न में 1 या 2 बौछार की संभावना और यहां का न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 21 डिग्री। कैनबरा में भी बादल छाएंगे, वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री। सिडनी में बारिश की आशंका, वहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 27 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक या दो बौछार पड़ने की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 29 डिग्री। डार्विन में बारिश के साथ तूफान की आशंका, वहां का न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री तक जाएगा। और भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहेगी और वहां का तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 31 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।